21वीं सदी के लिए दलित एजेंडा। तीसरी सहस्राब्दी व 21वीं सदी के आरंभ पर चारों ओर जश्नों की गूंज रही। निसंदेह जश्न जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इंसान के दुख और यंत्रणा भी जिंदगी का उतना ही या शायद ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। और इतिहास के चौराहों पर रुककर मानव समाज को जश्न मनाने के साथ साथ निर्लिप्त होकर समाज के भीतर की पीड़ाओं पर भी विचार करना चाहिए। विश्व का वर्चस्ववादी शोरीला मीडिया तो हमें यही यकीन दिलाना चाहेगा कि दुनिया अपने स्वप्नलोक की ओर बढ़ रही है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अति आधुनिक विद्युत उपकरणों के खेलों में लिप्त है। घर की चार दीवारी के भीतर ही आधुनिक कंप्यूटरों द्वारा नवीनतम ज्ञान उपलब्ध है, और ज्ञान का आनंद कंप्यूटर के पर्दे पर देख कर उसे भोगने में है। इसके आसपास के मानव समाज से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी दुनिया की जमीनी स्थिति पर एक सरसरी नज़र भी यह एहसास करवा देगी कि दुनिया में इंसानियत का बहुत बड़ा हिस्सा उतनी ही खराब स्थितियों में जी रहा है जितना 20वीं सदी के शुरू में जी रहा था। अमेरिका व कुछ और देशों में काले लोगों के प्रति व भारत में दलित लोगों के प्रति व्यवहार इसी जमीनी यथार्थ की ओर संकेत करता है। तीसरी सहस्राब्दी व 21वीं सदी के आरंभ में भारतीय बुद्धिजीवियों को तथा वस्तुगतता व बेबाकी से इस बात पर विचार करना चाहिए कि 20वीं सदी के दौरान भारत की जीवन स्थितियों के में सुधार के क्या प्रयत्न हुए व 21वीं सदी में इन परिस्थितियों को और कैसे सुधारा जा सकता है। 20वीं सदी के शुरू में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत में भविष्य दलितों का है। स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी इसी अर्थ में कुछ हद तक सही रही कि 20वीं सदी में दलित अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं, लेकिन यह देश पूरी तरह बंधन मुक्त नहीं हो सका। दलितों ने 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले और 20वीं सदी में डॉक्टर अम्बेडकर, ए.पी. रामास्वामी नायकर आदि नेता पैदा किए, जिन्होंने दलितों की जिंदगी की परिस्थितियों को तीखे रूप में सामने लाकर इन अमानवीय और बर्बर स्थितियों को बदलने की बेहद तीखी जरूरत बताई। लेकिन उनके प्रयत्नों को भी अभी अधूरी सफलता ही मिली है। विडम्बना यह भी है कि भारत में हिंदू चतुर्वर्ण व्यवस्था की वर्चस्ववादी प्रवृत्ति ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भी अधिक कहीं अत्याचारी व दमनकारी रही है। ब्रिटिश शासन ने तो दलितों को भारत में कुछ रियायतें प्रदान की। अतीत की दलित समस्याएं, आज के दलित प्रश्न। प्राचीन काल से ही वैदिक काल के दौरान भी हिंदू चतुर्वर्ण व्यवस्था ने भारत में दलितों को शूद्र का नाम दिया। बाकी तीन वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य। शूद्रों को न तो शिक्षा प्राप्ति का अधिकार दिया गया और न ही उपरोक्त तीन वर्णों की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई काम करने का अधिकार है। समाज में सबसे निम्न दर्जे का काम उन्हें दिया गया, सफाई। मृत पशुओं को उठाना और उनके चमड़ी से जूते बनाना और शमशान घरों में मुर्दे जलाना। इन कामों की परिस्थितियां ऐसी ही थीं कि इससे समाज में छुआछूत की अवधारणा उत्पन्न हो गई। मानव मल को हाथों में उठाकर सिर पर ढोना, पखानों की हाथों से सफाई, मृत पशुओं को हाथों से उठाना आदि स्थितियों के कारण ही तथाकथित उच्च जातियाँ इन कार्यों को करने वाली तथाकथित निम्न जातियों से अस्पृश्यता का व्यवहार करने लगी। गाँव में इन जातियों से जुड़े लोगों को गाँव से बाहर अलग रहने पर मजबूर किया गया और शहरों में भी इनकी दूसरे मोहल्ले से दूर अलग बस्तियाँ बनाई गईं। इससे भी अधिक अत्याचार यह कि पीढ़ी दर पीढ़ी इन जातियों में उत्पन्न बच्चों को इन्हीं नामों कामों में लगे रहने के लिए मजबूर किया गया और इन्हें अपना काम नहीं बदलने दिया गया। मनुस्मृति आदि पुस्तकों द्वारा इन काम करने वाले जातियों के सामाजिक अलगाव को धार्मिक मान्यता प्रदान की गई। इन जातियों के व्यक्ति यदि अपना काम बदलना चाहें तो इस पर उन्हें बर्बर शारीरिक यंत्रणाएँ दी जाती। सदियों तक यह क्रम जारी रहा। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के दौरान ही यह संभव हो पाया कि दलितों को शिक्षा प्राप्ति के कुछ अवसर दिए गए। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के भीतर भी आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि समाज सुधार आंदोलन व स्वामी विवेकानंद आदि संतों के प्रयत्न भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान ही शुरू हुए। आज पूरे देश में धर्म परिवर्तन के नाम पर बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है, लेकिन इस धर्म परिवर्तन की जड़ों की ओर ध्यान नहीं देता। दलितों में ही सर्वाधिक धर्म परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं। कारण यह कि हिंदू धर्म के भीतर उनके प्रति ब्राह्मणवादी मूलवादियों का अत्यंत अमानवीय व्यवहार और अस्पृश्यता के घृणित व्यवहार ने दलितों के सामने अन्य धर्मों का आश्रय लेने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। हालांकि धर्म परिवर्तन के बाद भी, चाहे ईसाई बनकर हुआ हो या मुसलमान बनकर, दलितों की स्थिति में अधिक फर्क नहीं आया, लेकिन उन्हें इंसान होने की इज्जत तो मिली। कम से कम धार्मिक पूजागृहों में उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार तो नहीं किया गया, जबकि हिंदू धर्म स्थलों पर तो उनके दाखिले पर ही पाबंदियां थीं। डॉक्टर अम्बेडकर व अन्य समाज सुधारकों को मंदिर प्रवेश के दलितों के अधिकार के लिए सत्याग्रह करने पड़े। धर्म परिवर्तन संबंधी इस तथ्य की ओर भी बहुत कम लोग ध्यान दिलाते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसक धर्म परिवर्तन 7वीं-8वीं सदी में हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य द्वारा करवाए गए, जिसके अनुयायियों ने हजारों बौद्धों की सामूहिक हत्याएं की और गर्व से ऐलान किया कि उन्होंने भारत से बौद्ध धर्म को नेस्तनाबूद कर दिया है। इन्हीं मूलवासियों ने 1992 में बाबरी मस्जिद गिराकर भी घोषणाएं की कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ और पनपा, लेकिन इसका विस्तार अन्य एशियाई देशों में हुआ। जबकि भारत की धरती से शंकराचार्य और उसके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को नष्ट कर डाला था। सदियों बाद दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया। दलित पुनर्जागरण से ही भारत में बौद्ध धर्म लौटा। अपने देहांत से कुछ सप्ताह पूर्व 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लाखों श्रद्धालुओं के साथ बौद्ध धर्म दीक्षा ली। हालांकि 1935 में डॉक्टर अम्बेडकर ने घोषणा कर दी थी कि वे जन्मे जरूर हिंदू परिवार में हैं, लेकिन वे हिंदू रूप में मरेंगे नहीं। भारत में दलित बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन अभी भी भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है, जबकि भारत की दलित जनसंख्या करीब 25 करोड़ है। हिंदू धर्म के दलितों के प्रति दमनकारी रवैये के कारण बौद्ध धर्म दलितों के लिए मानवीय अस्मिता का प्रतीक बन गया है। बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद और सामाजिक समता की अवधारणा भी मिलती है। इसलिए भारतीय दलितों के लिए बौद्ध धर्म अपनाना न सिर्फ अपनी मानवीय अस्मिता व पहचान स्थापित करना है, वरन सामाजिक समता के अपने आंदोलन में भी बौद्ध धर्म मुक्तिकामी धर्म के रूप में उनके सामाजिक आंदोलन को बल प्रदान करता है। भले ही डॉक्टर अम्बेडकर के देहांत के बाद दलितों के बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने की गति धीमी पड़ गई है, लेकिन उनके सामने 21वीं सदी में सामाजिक सांस्कृतिक रूपांतरण के स्तर पर लाखों करोड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म अपनाकर अपनी मानवीय अस्मिता का सशक्त उद्घोष करना बेहद जरूरी है। तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हिंसक चुनौती का सशक्त प्रतिरोध भारतीय दलित वर्ग द्वारा बौद्ध धर्म के सामूहिक उद्घोषण से ही संभव है। 21वीं सदी के दलित एजेंडे में दलित वर्ग द्वारा बौद्ध धर्म को दलित अस्मिता का सांस्कृतिक प्रतीक बनाना व साथ ही ईसाई व मुसलमान धर्म अपना चुके दलितों को आरक्षण का लाभ दिलाना भी शामिल है। महाराष्ट्र में ज्योतिबा व सावित्रीबाई फुले द्वारा दलितों में प्रारंभिक जागरण आंदोलन के बाद 20वीं सदी में डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देव शक्ति को सही अर्थों में जगाया। जर्मनी के विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मिथक को तो तोड़ ही दिया कि बुद्धि के मामले में दलित किसी भी तरह तथाकथित उच्च जातियों से कमतर हैं। अपनी अथक लगन से डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों में सशक्त जागृति आंदोलन विकसित किया। 1927 में उन्होंने दलितों के लिए चावदार झील से पानी लेने के अधिकार के लिए सत्याग्रह किया। दलितों को इस झील से पानी नहीं लेने दिया जाता था। इस अवसर पर डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भाषण दिया वह फ्रांसीसी क्रांति की भ्रातृत्व समानता व आज़ादी के आदर्शों पर बल देने जैसा था। भारत में बौद्ध धर्म के बाद पहली बार अस्पृश्यता के खिलाफ वास्तविक आंदोलन शुरू हुआ। कांग्रेस नेताओं विशेषतः महात्मा गांधी को भारत के करोड़ों दलितों की इस अत्यावश्यक समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा, लेकिन कांग्रेस और महात्मा गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर से दलितों के स्वाभाविक नेता होने का अधिकार छीनना चाहा। वे इसमें सफल नहीं हो पाए और दलित वर्ग ने सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर को ही सच्चा नेता माना। कम्युनिस्ट व अन्य वामपंथी भी दलितों के आत्मसम्मान के आंदोलन की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाए और वे यही सोचते थे कि समाज में आर्थिक परिवर्तन से दलितों की अस्पृश्यता की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। वे इस बात में कम समझदार साबित हुए, इसीलिए दलितों का विश्वास नहीं जीत पाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने दावा किया कि भारतीय समाज में दलितों की स्वतंत्र सत्ता है। वे न हिंदू हैं, न मुसलमान, और न मुसलमानों की तरह दलितों के लिए भी असेंबली में आरक्षित सीटों की मांग की। महात्मा बुद्ध गांधी ने इस बात पर डॉक्टर अम्बेडकर का जमकर विरोध किया था। वे अनशन पर चले गए। डॉक्टर अम्बेडकर पर महात्मा गांधी से समझौते के लिए चौतरफा दबाव डाला गया और वे कुछ शर्तों पर महात्मा गांधी के साथ समझौते पर मजबूर हुए। 24 सितंबर 1932 को इस समझौते को पूना पैक्ट कहा गया। इस पैक्ट द्वारा अम्बेडकर ने दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करवाई। डॉक्टर अम्बेडकर को भारत का संविधान बनाने का भी अवसर मिला। इसके द्वारा उन्होंने दलितों के लिए कुछ और रियायतें भी हासिल की। सरकारी नौकरियों, विशेषतः सफेद पोश नौकरियों में दलितों के आरक्षण द्वारा शामिल होने से दलितों को अस्पृश्यता के अपमान से कुछ हद तक मुक्ति मिली। लेकिन नौकरियों व शिक्षा प्राप्ति में आरक्षण दलितों की परिस्थितियां सुधारने की ओर सिर्फ एक कदम ही था। दलितों की बड़ी संख्या तो गरीबी व अमानवीय स्थितियों में जीने को मजबूर थी और करोड़ों दलित छुआछूत की समस्या से ही रूबरू थे। दलितों को अस्पृश्यता से कितना कष्ट था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1947 के सत्ता परिवर्तन के दौरान दलितों ने खुद के लिए आज़ाद देश अछूतिस्तान की मांग की थी, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बिल्कुल अलग देश होना था। 1947 के विभाजन के संदर्भ में हुए सांप्रदायिक दंगे से भी दलित वर्ग अलग ही रहा। उन्होंने न तो हिंदू सिखों और न ही मुसलमानों का ही साथ दिया। वास्तव में दोनों नवस्वाधीन देशों भारत और पाकिस्तान में इस बात पर रस्साकशी थी कि दोनों ही देश अधिकाधिक दलितों को अपनी तरफ रखना चाहते थे। दलितों के प्रति किसी सहानुभूति के कारण नहीं, वरन सदियों पुराने सफाई अन्य निम्न कोटि पेशा में उन्हें बनाए रखने के लालच में भी उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। और इसके बावजूद विभाजन के शरणार्थियों को राहत देने के मामले में दलितों के साथ भेदभाव किया गया। रामेश्वरी नेहरू जैसे समाज सुधारकों के प्रयत्नों के बावजूद पंजाब में दलितों को खेती योग्य जमीन नहीं दी गई। हालांकि पाकिस्तान चले गए किसानों की जमीनों को जाटों व अन्य उच्च जातियों के पाकिस्तान से आए लोगों को ये जमीनें दी गई। राजस्थान में दलित शरणार्थियों के लिए भी जमीन आरक्षित की गई और उन्हें जमीन का हक दिया गया, जबकि अपेक्षाकृत प्रगतिशील सोच वाले पंजाब प्रांत में ये कदम नहीं उठाए गए। उस समय दलितों की संख्या अम्बाला व जालंधर डिवीजनों में अधिक केंद्रित थी, इसलिए इनसे कमिश्नरियों को मिलाकर अछूतिस्तान बनाने की मांग की गई थी। विभाजन के बाद पंजाब में दलितों की स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितनी देश के अन्य राज्यों में थी। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और पंजाब में सिख धर्म के उदय से छूतछात व जाति व्यवस्था को काफ़ी चोट लगी। इससे पहले सिद्धनाथ संतों व कवियों, उससे भी पहले बुद्ध धर्म के उदय ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को चोट पहुँचाई थी। लेकिन हिंदू धर्म का चतुर्वर्णीय पारंपरिक ढांचा इन सुधारवादी प्रवृत्तियों को पराजित कर अपना वर्चस्व पुनः स्थापित कर लेता था और इस प्रकार दलितों का उत्पीड़न जारी रहता था। पंजाब में चूंकि सिख धर्म ने गहरी जड़ें जमा ली थी और यह हिंदू धर्म से अलग हो गया था, इसलिए यहाँ जाति पाति व्यवस्था को कुछ कड़ी चोट लगी। सिख धर्म में गुरुद्वारों में लंगर की प्रथा, जहाँ हर छोटा बड़ा एक साथ बैठकर भोजन करता है, ने भी पंजाब में जाति व्यवस्था की मान्यता कम की। लेकिन सिख धर्म में भी अंतरजातीय विवाह बहुत कम हुए। अब तो गुरुद्वारे भी जातियों के नाम पर अलग अलग बनने लगे हैं। गांव में मजहबी सिखों के घर अभी भी अन्य रिहायशी इलाकों से दूर हैं। इन बातों से पता चलता है कि भारतीय समाज में जाति पाति का रवैया कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए है। 60 वर्ष की आज़ादी, वर्षों की आरक्षण नीति, मंडल आयोग से उत्पन्न राजनीतिक उथल पुथल के बाद यद्यपि भारत में शक्ति संतुलन कुछ हद तक दलितों के पक्ष में हुआ है, और फिर भी एक ओर लालू मुलायम शरद यादव उभार, दूसरी ओर कांशीराम मायावती प्रवृत्ति के उभार के बाद भी यह बात पूरे निश्चय के साथ नहीं कही जा सकती कि दलित वर्ग भारतीय समाज की मुख्य धारा में सामाजिक व सांस्कृतिक रूप में पूरी तरह समाहित हो गया है। दलित वर्ग के एक छोटे हिस्से के जीवन में कुछ सुधार के बावजूद जो इन संवैधानिक सुधारों के कारण संभव हुआ, भारत में दलित जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बड़ी खस्ता हालत में जीने पर विवश। उन्हें न तो शिक्षा प्राप्ति, न ही अच्छे मानवीय जीवन और न ही कामकाज के चयन की सुविधा प्राप्त है। वे अपने पुश्तैनी कामों, सफाई, चमड़ा सफाई या मुर्दों को जलाने आदि कामों में लगे हैं। भारत के अधिकांश भागों में अभी भी भंगी या मेहतर मानव मल सिर पर उठाते हैं। उनके काम की स्थितियाँ वैसी ही खराब है जितनी पुराने जमाने में थी, क्योंकि उनके काम की स्थितियां ही ऐसी हैं, उन्हें गंदा समझा जाता है और इसीलिए उनके साथ अस्पृश्यता का अमानवीय व्यवहार किया जाता है। 13वीं और 14वीं लोकसभा में मायावती, फूलन देवी, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले आदि शक्तिशाली नेता चुनाव जीतकर पहुंचे। क्या उन्हें भारतीय समाज में दलितों के लिए सम्माननीय स्थान हासिल करने के लिए अनिवार्य एजेंडा सामने नहीं रखना चाहिए था? इस एजेंडे में दलितों के लिए क्या लक्ष्य सामने रखे जाने चाहिए? पहला, सबसे खराब, सबसे क्रूर व कचोटने वाली समस्या अस्पृश्यता की है। जब तक समाज से छुआछूत का कोड पूरी तरह से खत्म नहीं होता, तब तक दलित समस्या पूरी व्यांकित तौर पर हल नहीं हो सकती। अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून बने हैं, लेकिन कानूनों को सामाजिक जागरण व समर्थन से ही लागू किया जा सकता है। जब तक समाज में मानव समता के चिंतन का वर्चस्व नहीं होता, भेदभाव की समस्या चाहे यह धर्म और जाति के स्तर पर हो अथवा लिंग या उम्र के स्तर पर, का यह समाधान नहीं हो सकता। यह दीर्घकालीन लक्ष्य है और सामाजिक भेदभाव के संदर्भ में दलित समस्या सर्वाधिक संवेदनशील है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए दो स्तर पर नीतियां तय करनी होंगी। सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण समाज सुधार आंदोलन है। इन आंदोलनों में उदारवादी मानववादी शिक्षा का प्रसार, बड़ी संख्या में अंतर जातीय व अंतर धार्मिक विवाह शामिल है। डॉक्टर अम्बेडकर इस संबंध में पूर्णतया स्पष्ट थे। उनके अनुसार जब तक तथाकथित निम्न व उच्च जातियों के बीच बड़े स्तर पर अंतर जातीय विवाहों का क्रम शुरू नहीं होता, तब तक दलितों को निम्न या आदमी से कमतर समझने का व्यवहार समाप्त नहीं होगा। अब जबकि भारतीय समाज तथाकथित उदार अर्थनीति व मंडी की वैश्विक व्यवस्था अपना रहा है, तो यह ऐसे सामाजिक रस्मों रिवाज जारी नहीं रख सकता जिससे आर्थिक विकास में रुकावटें पैदा हो। हमें इस व्यवस्था में पूरी मानवीय शक्ति को श्रम शक्ति के रूप में स्वीकार करना होगा, न कि एक विभाजित समाज के जातिपात में बटे टुकड़े के रूप में। यह समाज की भी जिम्मेदारी है कि वह ऐसे कानून बनाए जिससे श्रमिकों का जाति आधारित विभाजन समाप्त होने की प्रक्रिया में तेजी आए। इस संदर्भ में निम्न सुझावों पर गौर किया जा सकता है। क, राज्य की ओर से अंतर जातीय विवाहों, विशेषतः तथाकथित जन निम्न व उच्च जातियों विवाहों को आर्थिक अनुदान व नौकरियों में प्राथमिकता आदि या अन्य तरीकों से उत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए मीडिया में सकारात्मक प्रचार पर भी बल दिया जाना चाहिए। ख, मुझे मत छूना वाद, मैं फला छूत का छुआ नहीं खाऊंगा आदि सबसे बुरी सामाजिक प्रथा है। उसका समाधान भी राज्य के स्तर पर किया जाना चाहिए। केंद्रीय व राज्य सरकारों के स्थानीय व अर्ध सरकारी संस्थाओं में रसोइये, पानी पिलाने वाले व वेटर आदि की सभी नौकरियां केवल दलितों के लिए आरक्षित कर दी जाएं। जब तक दलितों को ऐसे कामों में नहीं लाया जाता जो अब तक सिर्फ तथाकथित उच्च जातियों तक सीमित है, तब तक समाज उनका दर्जा ऊंचा नहीं उठ सकता। ग, पूरे देश में मल सफाई के लिए फ्लश व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए समयबद्ध योजना बने। 2010 तक या इसके आसपास तक पूरे देश में सिर पर मल ढोने वाला एक भी सफाई कर्मचारी नहीं रहना चाहिए। दुनिया का सबसे सभ्य देश कहलाने का दम भरने वाला यह देश अभी तक दुनिया के सर्वाधिक असभ्य मल सफाई व्यवस्था से भी छुटकारा नहीं पा सका है। गांव तक में जब तक फ्लश व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक पूरे देश के मल सफाई कर्मचारियों का वेतन कम से कम सफेदपोश कर्मचारियों के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाना चाहिए। घ, दलितों को अपने जातिवाचक नाम प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्हें दुनिया के काले रंग के लोगों की तरह, जिनका नारा है काला ही सुंदर है, अपने पृष्ठभूमि पर गर्व करना चाहिए। भंगी, मेहतर, चमार या चंडाल आदि के उपनाम उन्हें उतने गर्व से प्रयोग करने या बरतने चाहिए जितने गर्व से कोई शर्मा, गुप्ता या सिंह बताते हैं। अंतिम तौर पर तो सभी तरह के जातिवाचक नामों का प्रयोग समाप्त हो जाना चाहिए। राज्य को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे जातिवाचक नाम का प्रयोग इस तरह न हो सके जिससे कुछ जातियां कुछ अन्य जातियों से उच्च प्रतीत हों। दूसरा, मीडिया केंद्रित सूचना तकनीक के इस दौर में अन्य लोगों को जागृत करने और खुद अपने समाज में चेतना फैलाने के लिए दलित वर्ग को अपना एक टीवी चैनल व हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में राष्ट्रीय स्तर पर एक एक समाचार पत्र व राज्य स्तर पर प्रांतीय भाषाओं में एक एक समाचार पत्र केंद्रीय रूप में निकालना चाहिए। दलितों के तमाम पार्टियों व गुटों को इस साझे लक्ष्य के लिए सभी साधन एकत्रित कर जनतांत्रिक ढंग से मीडिया द्वारा समाज में अपनी उपस्थिति का जोरदार एहसास करवाना चाहिए। अब तक राजनीतिक दलों ने दलित वर्ग का सिर्फ वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है। इन दलों ने दलित समस्याओं को सिर्फ नौकरियों में आरक्षण तक सीमित रखा है। इससे दलितों के एक छोटे हिस्से ने समूचे रूप में शोषण करने वाले समाज में अपने लिए भी थोड़ी सी जगह बना ली है। दलित वर्ग से अन्य या सुविधा संपन्न तबका स्वयं में संतुष्ट होकर अपने गरीब भाइयों को भूल जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए महान थे क्योंकि वे अपने गरीब लोगों को नहीं भूले। दलित आंदोलन को आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्पिरिट को पुनः उभारने की गहरी जरूरत है, तभी दलितों का भविष्य बेहतर हो सकेगा। संसद व राज्यों की विधानसभाओं में दलित नेतृत्व डॉक्टर अम्बेडकर की स्पिरिट पुनः उभार पाता है या नहीं, यह बात देखने वाली है। अगर ऐसा न हो पाया तो दलित वर्ग भी अपने आत्मसम्मान व अन्य समस्याओं का समाधान संसद में नहीं सड़क पर खोजने निकलेगा।